Listeners, welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete and comprehensive update on the economic, business and stock market news of the day. Along with my co-anchor Subodh Mishra, I'm Sarabjit Kaur.
Namaskar, Shrotao. Karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. Aaj din hai Mangalwar aur hum aadhe ghante ke is show mein share bazaar aur arth jagat ki khabron par gaur karenge. Aaj ke samacharon par charcha karne ke liye aaj hamare saath studio mein hai varishth aarthik patrakar Puneet Jain. Namaskar Puneet, karyakram mein aapka swagat hai.
Dhanyawad Subodh.
Pehle headlines ke saath Sarabjit Kaur.
Thank you Subodh. Benchmark domestic equity indices surge over 2% amid positive global cues. Sensex soars over 1,570 points. Nifty closes above 23,300. India's retail inflation eases to 67-month low of 3.34% in March amid cooling food prices. WPI drops to 2.05% last month. And global crude oil prices registered downward slide. Brent crude trades at $64.42 per barrel.
देश के शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में 2% से ज्यादा का उछाल. सेंसेक्स 1,570 अंक बढ़ा. निफ्टी 23,300 के पार. मार्च में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति की दर 67 महीने के न्यूनतम स्तर पर 3.34% पर पहुंची. थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति पिछले महीने 2.05% पर आ गई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में गिरावट. ब्रेंट क्रूड ऑयल के भाव $64.42 प्रति बैरल पर. आइए खबरों पर नजर डालते हैं. शेयर बाजार का क्या हाल रहा. देश के शेयर बाजारों में आज तेजी का रुख रहा और प्रमुख सूचकांकों में 2% से ज्यादा की बढ़त देखी गई. अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर आयात कर में कुछ समय के लिए राहत दी है और ऑटो क्षेत्र के लिए आयात कर में अतिरिक्त छूट की उम्मीद है, जिससे बाजारों में उत्साह का रुख कायम है. बीएसई का सेंसेक्स 1,578 अंक यानी 2.1% बढ़कर 76,735 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 500 अंक यानी लगभग 2.2% बढ़कर 23,329 पर बंद हुआ. अन्य सूचकांकों पर गौर करें तो मिड कैप इंडेक्स में 3% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 3.2% का उछाल देखा गया.
The benchmark domestic equity indices today surged over 2% amid positive global cues following temporary tariff relief on electronic goods by the US and hopes for additional tariff exemptions for auto sector. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex rallied 1,578 points to close at 76,735. The National Stock Exchange Nifty 50 rose 500 points to settle at 23,329. The broader market indices at the BSE also posted strong gains. The mid-cap index climbed 3% and the small-cap index jumped 3.2%. In the Sensex index, 28 out of 30 companies ended in positive territory. Among the top gainers, IndusInd Bank rallied over 6.8%, Tata Motors as well as Larsen & Toubro both gained 4.5% each, and Axis Bank added more than 4.1%. Conversely, the top laggards were ITC, which decreased 0.36%, and Hindustan Unilever dropped 0.23%. In sectoral indices at the BSE, all 21 sectors registered gains. Among the top gainers, realty soared 5.8%, industries rose over 3.7%, and capital goods gained over 3.6%. Overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 3,302 companies advanced, 785 declined, and 169 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 48 companies hit their 52-week high, while 18 hit their 52-week low. Puneet, this rally in the stock market, what are the key reasons in your view? Is it the 90 days window period, decline in food inflation, temporary tariff relief in some sectors? What do you have to say about this?
So, Sarabjit, I think a lot of things are going in the right direction for the markets right now. But we must remember that last week was a very difficult week for the markets.
That's right.
The beginning of the week, we saw a very huge fall in the markets, and the spirits were really depressed. Most of the experts in the market expected economy to slip into recession in USA, and the hopes were really low of on a rebound in the markets. And then suddenly towards the end of the week, we saw positive statements coming from US President, pausing the tariffs. And so this is a market which really swings between extreme hope and extreme despair right now. However, I think if you look at the sheer numbers, so beyond the sentiment, beyond the statements being made by various politicians, I think if you look at the numbers, the markets are looking at very positive economic numbers. The growth in USA, inflation numbers in US, employment numbers, and today in India, if you see the story that we're going to read about, which is inflation in India, I think all these numbers are very supportive of economic growth going forward. And I think that gives confidence to market players to come back. We've rarely seen this kind of a rebound. When this negative economic news was coming in last week, it looked very difficult that how will we find any footing in this market. But I think right now the economic news seems to be pretty okay.
जी और अंतर्राष्ट्रीय हालात पर अभी जैसे आपने जिक्र किया है और इसके अलावा भी जो जिस तरह के हालात बने हुए हैं और पिछले अगर हम देखें तो दो साल से जिस तरह की अनिश्चितता थी और उस अनिश्चितता को अभी जो अमेरिका के जो कदम हैं ताज़ा उसने और बढ़ा दिया है इसको लेकर जो बाज़ारों में तहलका था पिछले कुछ समय से इसलिए ये जो हम अभी की तेजी देख रहे हैं या बीच में एक दिन या दो दिन ऐसा कुछ नजर आ जाता है कि अच्छा थोड़ी सी छूट मिल गई है लेकिन क्या लगता है ओवरऑल क्या अमेरिका को अपने जो उसने रास्ता अख्तियार कर लिया है उसमें जब तक वो उस पर बना रहेगा तब तक हमारे बाजारों पर दबाव बना रहेगा या
देखिए जो सबसे बड़ा सवाल है पूरी दुनिया के सामने वो ये है कि क्या यूएस इकोनॉमी क्योंकि जो फैसले ले रहे हैं वहां पर सरकार तो क्या ये यूएस इकोनॉमी रिसेशन की तरफ बढ़ रही है
जी
अगर वो रिसेशन की तरफ जाते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर तो ये जो बुलिशनेस हम देख रहे हैं मार्केट्स में या हम तेजी देख रहे हैं ये नहीं बरकरार रह सकती इसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर वहां पर जो पहले उम्मीद थी कि सॉफ्ट लैंडिंग यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को हम मेंटेन कर पाएंगे और इन्फ्लेशन को कम ला पाएंगे यदि ऐसा जो गोल्डीलॉक्स सिचुएशन अगर बनती है इकोनॉमी में जिसकी उम्मीद थी पहले तो फिर डेफिनेटली मार्केट्स के अंदर दम रहेगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है आसान नहीं है इसका जवाब देना क्योंकि कई प्रकार के सिनेरियोज हैं और दूसरी बात है ये सिनेरियोज फ्लूइड है ये रोज चेंज हो रहे हैं हर घंटे के हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये बदल रही है पिक्चर तो कोई भी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है एक्सपर्ट्स के लिए पर यदि आपने जैसे सवाल किया कि अगर वो अपने इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं यूएस अपना जो टफ एक ट्रेड स्टांस
बनाए रखते हैं
तो फिर डेफिनेटली ये रिसेशन का संभावना बहुत बढ़ जाती है और मार्केट्स में
क्योंकि
फिर बड़ी करेक्शन
जो ट्रेड वॉर देख रहे हैं हम खासकर चाइना के साथ जो हालात हैं चाइना आज ही खबर आ रही थी कि उसने बोइंग की डिलीवरीज फ्रीज कर दी है नहीं ले रहे हैं आई मीन ये बहुत बड़े झटके हैं
बिल्कुल देखिए ये फुल ब्लोन ट्रेड वॉर है और अगर हम देखें तो अमेरिका ने पहले तो जैसे पूरे विश्व को हिला दिया फिर उन्होंने चाइना को आइसोलेट किया और ऐसा लगता है ये शुरुआत से उनका एक स्ट्रेटजी रही है कि वो चाइना से मेन जो लड़ाई है वो चाइना से है लेकिन शुरुआती दौर में उन्होंने सभी से एक तरह से मैं कहूंगा कि ठाना उन्होंने रास्ता और अब वो उसको धीरे धीरे करके चेंज कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी को पर अगेन जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है रोज चेंज हो रही है इसका क्या रूपरेखा बनेगी फाइनल ये भी कहना मुश्किल है
जी अगली खबर पे नज़र डालते हैं हम मुद्रा बाजार में रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 28 पैसे मजबूत होकर 85.77 रुपये पर बंद हुआ छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती दिखाने वाला डॉलर इंडेक्स आज 99.85 के आसपास बना हुआ था और भारत के बाजारों की तरह एशिया के बाजारों में भी आज तेज़ी रही सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 2.1% ऊपर बंद हुआ जापान के निकेई और दक्षिण कोरिया के कोस्पी दोनों में लगभग 0.8% की बढ़त देखी गई हांगकांग का हैंगसेंग 0.23% ऊपर आया और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक मज 0.15% की बढ़त दर्ज कर पाया। इस बीच प्रमुख यूरोपीय बाजारों में भी सकारात्मक रुख बना हुआ है। दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक जर्मनी का डैक्स 0.9%, जब फ्रांस का कैक 0.2% और लंदन का फुटसी 0.8% ऊपर था। पुनीत, ये देखे तो यूरोपियन मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट है अगर हम जर्मनी को छोड़ दें तो। वहाँ चीन की बात तो समझ में आती है कि उसको फ्लैट रहना या नेगेटिव रहना बात बनती है, लेकिन बाकी के बाजार कल इनके तेज थे। अगर हम बाकी एशियन मार्केट्स की बात करें, आज वो तेजी नहीं है। तो क्या हमारे बाजारों की जो आज की तेजी थी वो कल हमारा बंद था, वो ड्यू वाला आया है क्या?
देखिए, ये संभावना है क्योंकि अमेरिका में पिछले सप्ताह भी तेजी थी, कल भी तेजी रही वहां पर। लेकिन मैं आपको, आपने खबर पढ़ी अभी इससे पहले जो डॉलर इंडेक्स की हम बात, ये बड़ा एक बहुत बड़ा आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत बड़ा सवाल बन के उभरेगा ये कि डॉलर की जो स्ट्रेंथ थी, डॉलर और उसके स्ट्रेंथ को दर्शाता है डॉलर इंडेक्स, ये करीब करीब 110 का इसका आंकड़ा था अभी थोड़े दिन पहले, करीब एक डेढ़ महीने पहले, और 110 से करीब 100 के नीचे अब ये आंकड़ा आ रहा है डॉलर इंडेक्स का। तो ये हमने कभी नहीं देखा कि इंडेक्स मार्केट में जब करेक्शन होती है तो पैसा निकलकर सेफ हेवन जो है वो डॉलर होता है या यूएस ट्रेजरीज होती है। इस जब ये मंदी शुरू हुई अमेरिका में भी और विश्व बाजारों में, तो हमने देखा कि उसके साथ साथ डॉलर में गिरावट आई, जबकि डॉलर में तेजी आनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है ये पूरा एक इकोनॉमिक ऑर्डर जो है, वर्ल्ड ऑर्डर जो है, ये चेंज हो रहा है। और खासतौर से ये सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है अभी भी अमेरिका के लिए बन के उभरेगा। क्यों? और उसका देखिए, उस पर नजर रखिए डॉलर इंडेक्स पर। अगर डॉलर इंडेक्स के अंदर और क्राइसिस आता है, अगर ये डॉलर इंडेक्स यहां से और गिरता है, तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन जो है उससे खराब होगी और वो दर्शाएगा कि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है।
US stocks gained on Monday, buoyed by the tech sector after the White House exempted electronics from new tariffs. However, comments from President Donald Trump and Commerce Secretary Howard Lutnick on Sunday suggested these exemptions might be temporary. Both the S&P 500 and Dow Jones Industrial Average rose over 0.7% each, and Nasdaq Composite added over 0.6%. Puneet, we're seeing a rise in these markets, but as you have yourself been saying, that the situation is very, very fluid. The announcements are coming back to back. There's a lot of uncertainty. How is the resilience factor in these markets vis-a-vis the Indian stock market?
So, interestingly, while the developed markets like USA or European markets are supposed to be more resilient,
correct,
they're supposed to have low volatility, they're supposed to be more fundamentally stronger. What we have seen is that the Indian stock markets have been outperforming these developed, so-called developed markets. Our volatility index has also been lower. In US, last week I was watching, and the volatility index went, the VIX went up to 50. And usually it used to be 15, 16. VIX is also known as the fear index. So if you look at the developed markets last week, the fear index was at all-time high, around 50. And I have seen those levels only at the time of the COVID outbreak, which happened in 2020. So clearly, I think Indian markets happen to be in a much better space as compared to developed markets. And also, we have seen that idea being reinforced by many FIIs. We have seen Morgan Stanley, Goldman Sachs, the large global investors endorsing that idea that Indian markets are today poised to outperform the global markets, and they are more stable in many ways because of the large, I think the macroeconomic stability of Indian markets, Indian economy is very significant right now.
ये बात अभी जैसा सरबजीत ने जो खबर पढ़ी है और आपने जो इसका विश्लेषण किया है, तो ये बात समझ में आती है कि हम वैसे भी आपदा में अवसर देखने वाले लोग हैं।
बिल्कुल।
तो भारत को शायद चीन को जो नुकसान होगा तो शायद हमें फायदा।
ये बात कई बार अब आ रही है कि देखिए, पूरी विश्व में एक क्राइसिस है या एक चैलेंज है, लेकिन भारतीय जो है शायद हम इसका कुछ पॉजिटिव आउटकम इसका निकाल पाएंगे इकोनॉमिक सेंस में, ऐसी उम्मीद जरूर है।
Moving on to the next big story of the day, India's retail inflation eased to 3.34% in March from 3.61% in February, driven by significant easing in food prices. According to data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI, it is lowest year-on-year inflation after August 2019. Meanwhile, inflation in rural areas stood at 3.25% and at 3.43% in urban regions. The food inflation rate for the last month, based on the All India Consumer Food Price Index, CFPI, is provisionally reported at 2.69%, down from 3.75% recorded in February. Corresponding food inflation rate for rural areas stood at 2.82% and for urban areas was reported at 2.48%. The ministry said that the food inflation was lowest after November 2021. According to MOSPI, decline in headline inflation and food inflation during the month of March is mainly attributed to decline in inflation of vegetables, eggs, pulses and products, meat and fish, cereals and milk products. The Reserve Bank of India aims to keep inflation within a range of 2 to 6% with a medium-term target of 4%. Earlier this month, the RBI revised its inflation forecast for the fiscal year 2025-26 to 4%, down from 4.2%, citing a significant improvement in the food inflation outlook. Puneet, the growth prospects have been slashed from 6.7 to 6.5%. On the other hand, there is a decline in inflation forecast. Does it augur relief in the real terms for the Indian household in the light of the tariff turbulence prevailing in the global market?
So Sarbjit, two very important points actually emerge from the news that you just read out. The most important part is that the food inflation, which is extremely of extreme importance.
Correct.
to weaker sections of society.
That's
people
right.
who have less income. Because food index comprises almost 50% of the consumption basket of rural households as well as urban households. And if we see a significant decline in the food basket and food prices, it improves the disposable income of the households in rural India as well as urban India.
More purchasing power
is there. Along with, we have seen tax reforms, tax concessions being given. At the same time, fortunately for us, fuel prices are also down. So we have this very happy situation despite global turbulence. So we have
a cascading effect.
A global environment of great uncertainty, great concern, anxiety, I would say. And yet, domestically, if you see, we have a very good situation where food inflation, fuel inflation, they're under control. There's more disposable income in the hands of households. I think all that is adding up to this resilience that we were just now talking about. Why is Indian market so resilient to global shocks? And I think this is one of the reasons that the domestic economic affairs, I think, have been handled very well. We have RBI, which is now they're cutting rates. They don't have anxiety while cutting rates. While in US, Fed is not so confident. They're still saying that we'll evaluate, we'll see if we can cut rates or not. So I think we have this positive tailwind, so to say, for growth. Despite the fact you mentioned that we have RBI has cut growth estimates, but I think that is more as a concession to the global challenges that we have rather than domestic concerns.
जी और RBI का जिक्र आया तो अभी जो RBI का लक्ष्य है कि inflation को 2 to 6% के बीच रखे या medium term target 4% का है. इसको लेकर अभी अगर हम देखें जिसे रिवाइज किया है उन्होंने अपना फोरकास्ट अभी जैसा बताया सरबजीत ने कि 2025-26 के लिए ये 4% के लिए उनका है फिस्कल ईयर पे तो पहले 4.2 था थोड़ा सा कम किया है उन्होंने अभी जो हालात हैं हमारे देश में और खास करके अगर हम अपनी आबादी को ध्यान में रखें और उसकी जो डिपेंडेंसी है जिन फैक्टर्स पे उनको ध्यान में रखें तो लगता है कि ये अचीवेबल है.
देखिए बिल्कुल अचीवेबल है क्योंकि आरबीआई ने जो अपने एस्टिमेट्स दिए अगले एक वर्ष में इन्फ्लेशन खासतौर से वो करीब करीब 3.5 से लेकर जो फर्स्ट क्वार्टर में 3.5-3.6 से इन्फ्लेशन 4.2 उन्होंने एस्टिमेट किया तो मुझे लगता है कि आरबीआई काफी कॉन्फिडेंट है और आरबीआई के पास हेडरूम है 6% तक जाने का. तो उनका अपर टॉलरेंस लिमिट जो है वो 6% इन्फ्लेशन का है पर वो ये कह रहे हैं कि हमारा अनुमान है कि 4% में हम निपटा देंगे. और ये जो वर्ष है जैसे हमने हम बार बार बात कर रहे हैं कि बड़ा चैलेंजिंग वर्ष है ग्लोबल फैक्टर्स जो है काफी कठिन है, उसके बावजूद आरबीआई सीम्स टू बी कॉन्फिडेंट। और खास बात है कि आरबीआई की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, आरबीआई सिर्फ कहने के लिए एक अनुमान नहीं देता है, आरबीआई के हमने देखा है कि क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है बैंक की। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि ये अचीवेबल टारगेट है, और यदि हम ये अचीव कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।
और वैसे भी मतलब जो आप आरबीआई का हेडरूम बता रहे थे, वैसे ही हमारे शायद अर्थव्यवस्था में भी हेडरूम है अभी, क्योंकि जो क्रूड प्राइसेस हैं हम आगे देखेंगे, वो भी
उसी राहत हमें काफी
को हम हासिल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। जी, अगली खबर पर नजर डालते हैं। WPI के आंकड़े हैं, थोक मूल्य सूचकांक WPI आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष मार्च में घटकर 2.05% पर आ गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आज जारी आंकड़ों में बताया कि उससे पिछले महीने यानी फरवरी में मुद्रास्फीति 2.38% थी। मार्च में प्राथमिक वस्तुओं की वार्षिक मुद्रास्फीति दर कम होकर 0.76% रह गई, जो फरवरी में 2.81% थी। आंकड़ों के अनुसार WPI खाद्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 4.66% थी, जो उससे पिछले महीने में 5.94% पर थी। इस बीच ईंधन और बिजली श्रेणी फरवरी में 0.71% की अपस्फीति के मुकाबले 0.2% के साथ सकारात्मक क्षेत्र में लौटाई। विनिर्मित उत्पाद श्रेणी में फरवरी में मुद्रास्फीति 2.86% थी, जो मार्च में बढ़कर 3.07% हो गई। मंत्रालय ने बताया कि मार्च में मुद्रास्फीति की सकारात्मक दर मुख्य रूप से खाद्य उत्पाद, अन्य विनिर्माण खाद्य वस्तुओं, बिजली और वस्त्र निर्माण की कीमतों में वृद्धि के कारण आई है। WPI थोक व्यापारियों और अन्य कंपनियों के साथ थोक में बेची और कारोबार की गई वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को दिखाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को मापता है। इसके उलट WPI कर और अन्य शुल्क रहित कीमतों का पैमाना है। तो ये WPI के आंकड़े क्या बता रहे हैं पुनीत?
देखिए, WPI आंकड़े जो है, जैसे हम प्रोड्यूसर प्राइसेस भी कह सकते हैं, कि जो थोक में जो यानी फैक्ट्री गेट पर जो सामान बन रहा है, क्योंकि वहां से जो कंज्यूमर के पास पहुंचता है उसके अंदर और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो प्राइसेस को डिटरमिन करते हैं, पर WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स एक कोर, मैं कहूंगा उसकी जड़ है CPI की। और अगर WPI में हम प्रेशर देखते हैं तो वो आगे जाकर CPI में रिफ्लेक्ट करता है, ट्रांसलेट करता है। तो अभी हम अगर WPI के प्राइसेस को देखें तो वहां भी मॉडरेशन आ रहा है। और वैसे WPI के जो प्राइसेस है वो इंटरनेशनल प्राइसेस ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल के अगर आप उसका कंपोजिशन देखेंगे तो CPI में यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड को ज्यादा अहमियत दी जाती है, बिकॉज वो कंजम्पशन के आइटम है, जबकि WPI में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को हम ज्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि वहां पर हम सामान बनाकर आगे बेचने की बात कर रहे हैं। तो क्लियरली मुझे लगता है कि पर WPI जो है वो आने वाले समय को दर्शाता है या उसकी तरह संकेत करता है। तो मुझे लगता है कि ये WPI आंकड़े जो है वो काफी पॉजिटिव है।
हाँ, और जैसा अभी इसके पहले वाली खबर पे भी था, जैसा सरबजीत बता रही थी कि जो हमारा खुदरा जो मुद्रास्फीति की दर थी उसके आंकड़े, और शायद भारत ने जो तरक्की की है पिछले दिनों, और अगर हम उत्पादन का देखें और जो खास करके खाद्य अगर हम मुद्रास्फीति की बात करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा वो रूरल सेक्टर और एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हाथ रहता है, और उसमें जो भारत ने पिछले दिनों टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी और वो जो काम किया जा रहा है, जो तरक्की कर रहा है, उसका बहुत बड़ा योगदान है।
बहुत बड़ा योगदान है, और देखिए उसका सीधा असर जो रूरल पॉपुलेशन है हमारी, उसकी आमदनी पर पड़ता है। तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव एक एरिया है जिसकी तरफ हमें जरूर ध्यान देना चाहिए, और फॉर्चुनेटली अभी तो वो एक पॉजिटिव,
क्योंकि अभी अभी एक खबर देख रहा था मैं कि राजस्थान में इस समय, अभी अगर हम देखें अप्रैल के बाद, इस समय जो फसलें कट जाती थी, जो रेगिस्तानी इलाके थे, बिल्कुल एरिड इलाके थे, वहां कुछ नहीं होता था, वहां 60 दिन की मूंग की फसल होने लगी है। ये अद्भुत बात है।
और अच्छा, एक और आज खबर आ रही थी, वो मैं सुन रहा था कि मॉनसून का जो फोरकास्ट आया है वो भी पॉजिटिव आया है, कि शायद हम दोबारा से एक अच्छी मॉनसून की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो ट्रेंड है फूड इन्फ्लेशन का, ये एक
काफी ईज होगा।
The government today said that India's trade with the United States is expected to grow and reach $500 billion by 2030. Briefing media in New Delhi, Commerce and Industry Secretary Sunil Barthawal said that there are both concerns and opportunities for India in terms of the current tariffs. However, the country has taken a path of trade liberalization and bilateral trade agreement with the United States. He added that the path will open a lot of opportunities for both the countries. The secretary also informed that both sides broadly came to an understanding on the next steps towards a mutually beneficial multi-sector bilateral trade agreement with the goal to finalize its first tranche by fall 2025. He added that both countries will hold discussions on a bilateral trade agreement this week. The two countries will sign the terms of reference for the first part of the bilateral trade deal. Puneet, in the current proposed tariff regime, in your view, which side is the scale weighing more for India? Concerns or opportunities?
So, Sarabjit, I think there are, of course, a lot of concerns because we have a trade surplus with the USA. So about $75 billion is a trade surplus. And US is determined to bridge that gap. So clearly, I think we will need to import more from USA going forward. And whatever we say, there will be an impact on domestic industry because of that. But I think there are also opportunities which emerge because the opportunities that we'll have in terms of exporting more to USA, and here the industry officials are saying that probably our trade will reach $500 billion in next 3-5 years. So I think, therefore, I think while there are concerns and challenges, opportunities are significantly more.
Oil prices inched down today with the International Energy Agency IEA slashed its oil demand forecast. Brent crude was trading over 0.7% down at $64.42 per barrel. WTI crude was also trading over 0.7% down at $61.07 per barrel when reports last came in. Meanwhile, the IEA cut its forecast for global oil demand growth to 730,000 barrels per day BPD this year from 1.03 million BPD and to 690,000 BPD next year, citing escalating trade tensions. Earlier in a monthly report, Organization of the Petroleum Exporting Countries said world oil demand would rise by 1.3 million barrels per day in 2025 and by 1.28 million BPD in 2026. Both forecasts were down by 150,000 BPD from last month's figures. Puneet, how do you read the picture of crude oil and its impact on the Indian economy?
So I think crude story is very significant for India. Right now it is not being played up or being in the focus. But the truth is that we are looking at crude prices close to $60 per barrel. Last we saw this was probably in 2018 or 19, 7-8 years back. I think, and India importing crude oil worth more than $200 billion a year, it's a significant saving for us, and I think it will have tremendous macroeconomic benefit for our country.
आइए सोने और चांदी पे भी नजर डाल लें. सराफा बाजार में आज सोना मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.05% गिरकर यानी लगभग फ्लैट 93,390 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. वहीं चांदी 0.12% बढ़कर 95,340 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक जून में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य बिना किसी बदलाव के 93,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. मई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.03% बढ़कर 94,896 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रहा था. पुनीत, ये सोने का हमने देखा पिछले दिनों भी, जब पहले हम बात कर रहे थे कि भाई सबका सेफ होता था डॉलर और वो सारी जो बातें थी, लेकिन सोना फिर से लाइमलाइट में है.
देखिए बिल्कुल, और सच बात तो है कि दुनिया के जितने सबसे बड़े बैंक्स हैं वो सब सोने की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि डॉलर की जो सेफ हेवन स्टेटस था वो अंडर चैलेंज है. यूएस ट्रेजरीज में भी हमने देखा पैसा नहीं गया, तो अब की बात जब पैसा निकला रिस्क मार्केट से तो सारा वो प्रेशियस मेटल्स की तरफ, मुख्यतः से गोल्ड की तरफ और सिल्वर की तरफ उसकी निवेश हुआ.
और इवन बड़े निवेशक और छोटे निवेशक भी सोने की तरफ आकर्षित होने लगे.
देखिए छोटे निवेशक तो सोने में अपनी उनको सेफ्टी ज्यादा लगती है, पर बड़े निवेशक जैसे बैंक्स हैं वो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया.
पुनीत, कार्यक्रम में आने और चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
धन्यवाद सुबोध.
Listeners, before we wrap up today's edition of Market Mantra, a reminder of the headlines. Benchmark domestic equity indices surge over 2% amid positive global cues. Sensex soars over 1,570 points. Nifty closes above 23,300. India's retail inflation eases to 67-month low of 3.34% in March amid cooling food prices. WTI drops to 2.05% last month. And global crude oil prices register downward slide. Brent crude trades at $64.42 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. Goodbye.